मुझे मरने का शौक नहीं है, मैं नहीं जा रही। मुझे पता है तुम लोग मुझे अंदर क्यों भेजना चाहते हो, ताकि भाई का सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही आए, लेकिन मैं तुम लोगों के इस प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तो कहती हूँ हम सबको एक साथ अंदर जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। पर मुराद ने डरते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाला हूँ तुम लड़कियों के साथ। अंदर पता चला भाई ने तुम तीनों को तो कुछ नहीं कहा, मेरी चटनी बना देंगे। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, हमें ना भाभी को पहले भेजना चाहिए। देखो भाभी भाई की मंगेतर है और उनकी शादी होने वाली है। भाई भाभी को कुछ भी नहीं कहने वाले, उल्टा उन्हें बस इतना कहेंगे कि बच्चों को समझा देना कि आइंदा से ये हरकतें ना करें, है ना भाभी? इनायत को सांप सूंघ गया था जैसे ही उसका नाम लिया जाता है। इनायत जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। भले ही मुझे सारी जिंदगी यहीं पर खड़े रहना पड़े, मुझे मंजूर होगा, पर मैं नहीं जाऊंगी अंदर। इनायत को ऐसे डरता हुआ देख जन्नत और अमल उसके पास आती हैं और उसे संभालते हुए कहती हैं, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, आप अकेली अंदर नहीं जाएंगे, हम सब अंदर जाएंगे, वरना मुराद भाई अकेले जाएंगे। मुराद एकदम से हैरान हो जाता है, ये लड़कियाँ कितनी चालाक हैं, एक मिनट में ही उसे बलि का बकरा बना देती हैं। अमल ने मुराद को पीछे से धक्का देकर दरवाजे के बिल्कुल अंदर धकेलते हुए कहा, जाओ जाकर भाई से बात करो। मुराद मियाँ की जान तो उसके गले से बाहर निकलने को हो गई थी, पर जैसे ही उसने स्टडी टेबल पर देखा तो उसने एक सुकून की सांस ली, क्योंकि रियाज वहां पर मौजूद ही नहीं था। रियाज को वहां ना देखकर मुराद को बहुत अच्छा लगता है और उसने पलटकर तीनों को देखते हुए कहा, अरे भाई तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो तीनों हैरान हो जाती हैं ये सुनकर और जल्दी से दरवाजे से झांकते हुए अंदर देखने लगती हैं। सच में इस समय स्टडी टेबल खाली थी, रियाज यहाँ पर मौजूद नहीं था। भाई कहाँ गए? अमल ने हैरानी से पूछा तो मुराद ने एटीट्यूड के साथ कहा, शायद भाई को पता चल गया होगा कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए पहले ही डर कर यहाँ से चले गए हैं। कौन किससे डर गया है? अचानक से रियाज की आवाज़ आती है, जो बाथरूम से स्टडी रूम में दाखिल होते हुए मुराद को देखते हुए ये सवाल करता है। वो तीनों जो दरवाजे से अपनी मुंडी कछुए की तरह निकाल कर देख रही थीं, अचानक से रियाज की आवाज़ आने पर उन तीनों की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो तीनों एक साथ पीछे की तरफ होती हैं, पर शायद जल्दबाजी में वो तीनों खुद को संभाल नहीं पाती हैं और एक दूसरे की खोपड़ी के साथ टकरा जाती हैं। अपने सर को सहलाते हुए वो तीनों दरवाजे पर खड़ी थीं, मतलब कि अब चारों के चारों दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देखकर रियाज की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो उन चारों को देखते हुए कहता है, अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। मुराद पहले अंदर दाखिल होता है और उसके बाद तीनों लड़कियां एक एक करके अंदर कदम रखती हैं। वो चारों स्टडी टेबल के सामने किसी अपराधी की तरह खड़ी थीं और रियाज स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो अपनी स्विंग चेयर पर हल्का हल्का स्विंग होते हुए उन चारों को देख रहा था। उन चारों के हाथ आपस में नीचे की तरफ जुड़े हुए थे और चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। रियाज ने घूरते हुए उन चारों को देखकर कहा, मैंने ये कहा कि कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत थी हवेली से बाहर जाने की? रियाज ने सख्ती से उन चारों से सवाल किया था, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इस तरीके से चुप देखकर रियाज की आंखें तीखी हो जाती हैं और वो गुस्से में कहता है, जब मैं सवाल करूं तो मुझे उसका जवाब चाहिए, और वो भी मेरी आंखों में देखकर। बताओ क्यों गई मेरी इजाज़त के बिना हवेली से बाहर? बाहर कुछ भी हो सकता था, तुम सबकी जान जा सकती थी, तुम पर हमला हो सकता था, ये जानते हुए भी तुम सब बिना सिक्योरिटी और बिना किसी सेफ्टी के घर से बाहर निकल गई। तीनों लड़कियां एकदम से सिहर जाती हैं और उनके चेहरे पर डर पसर जाता है। रियाज ने उन्हें घूर कर देखा और इनायत को देखते हुए कहा, इनायत मेरी आंखों में देखो और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जब मैंने तुमसे कहा था कि ना तो तुम बाहर जाओगी और ना ही अमल और जन्नत बाहर जाएंगे, तो फिर तुम इन्हें लेकर बाहर क्यों गई? इनायत ने धीरे से नामे सर हिलाया, पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। रियाज की आंखें छोटी हो गई और उसने घूरते हुए इनायत को देखकर कहा, सबसे पहले तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बातें करो, और ये इशारे में सर हिलाने का क्या मतलब है? मुझे इशारा नहीं, शब्द चाहिए। भाई भाभी, जन्नत ने इतना बोला ही था कि रियाज ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, अगर सवाल तुमसे ना किया जाए तो जवाब देने की हिम्मत भी मत करना। सॉरी, इनायत की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने बहुत मुश्किल से अपने मुंह से ये दो शब्द निकाले थे, क्योंकि रियाज का गुस्सा सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि अपने भाई बहनों पर भी बराबर से बरस रहा था। रियाज अपनी जगह पर खड़ा होता है और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने इनायत को देखकर कहा, सॉरी, तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? मेरी बात ना मानकर अब तुम मुझसे ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी एक नासमझी की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी? इनायत का चेहरा अभी भी नीचे था और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं की रियाज से नजरें मिलाने की। रियाज इनायत के सामने आ जाता है और गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए कहता है, इस हवेली में तुम्हें हर चीज़ करने की आज़ादी है, तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हो, बस एक चीज़ है जो तुम नहीं कर सकती हो और वो है मेरी बात को ना करना।
कभी भी ये मत समझना कि तुम मेरी बीवी हो इसीलिए तुम्हें हर चीज के लिए बख्शा जाएगा। मैं अपनों की खातिर अगर दुनिया से लड़ सकता हूँ तो अपनों की खातिर अपनों से भी लड़ सकता हूँ। इसीलिए ये मेरी तुम्हारे ऊपर पहले और आखिरी वार्निंग है। आज के बाद अगर तुमने मेरी बात को ना करने की कोशिश या फिर सिर्फ सोचा भी तो याद रखना मैं तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें सारी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर पर बैठा दूंगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर मुझे एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की को सारी जिंदगी घूमना पड़ेगा तो। और इसे धमकी मत समझना, ये मेरा ऑर्डर है। इनायत ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने धीरे से हां में सर हिलाया। रियाज ने घूरते हुए जन्नत और अमल को देखकर कहा, तुम दोनों को कुछ कहना है? सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। उन दोनों ने एक साथ सुर मिलाते हुए रियाज को देखकर कहा और अब रियाज की नजरें सिर्फ मुराद के ऊपर थीं, जो डर से कांपने लगा था।